तर्क, राजा संतों का शिविर के रूप में और इसकी अंतिमकालिक समानताएं। राजा संतों का शिविर का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित है, एक निष्ठावान समुदाय जो समय के अंत में दुष्ट शक्तियों द्वारा घिरा गया है, जो कुरान की उन लोगों की कहानी के साथ मेल खाता है जो अलाम में अपने विश्वास के कारण अपने घरों से निकाले गए, साथ ही नाजी जर्मनी, एवियन सम्मेलन और हवारा समझौते के कारण होने वाली व्यवधानों से पहले फिलिस्तीन में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के ऐतिहासिक सह अस्तित्व के साथ। प्रकाशित वाक्य में मेमने की जीवन की पुस्तक कुरान में शाश्वत तख्ति को प्रतिबिंबित करती है, दोनों ही धर्मी लोगों के दैवीय रिकॉर्ड का प्रतीक हैं, जबकि नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में नई पृथ्वी, जिसे एक गौरवशाली वालहाला के रूप में व्याख्या किया गया है, प्रकाशित वाक्य में नया यरूशलम और इस्लामी अंतिम कालशास्त्र में जन्नत अल फिरदौस के समानांतर है, जो उन विश्वासियों के लिए नवीकरण का वादा करता है जो उत्पीड़न को सहन करते हैं। राजा संतों का शिविर के रूप में और कुरान की उत्पीड़ितों की कहानी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में संतों का शिविर, प्रकाशित वाक्य 22:9 उस निष्ठावान समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जो समय के अंत में शैतान की सेनाओं, गोग और मागोग द्वारा घिरा गया है, उत्पीड़न को सहन करता है लेकिन अंततः दैवीय हस्तक्षेप द्वारा संरक्षित होता है। राजा अपनी धार्मिक सह अस्तित्व के स्थान के रूप में ऐतिहासिक महत्व के साथ इस अवधारणा के साथ मेल खाता है। कुरान भी सूरह अल हश्र 59:2-9 में इसी तरह के विश्वासियों के एक समूह की बात करता है जो अल्लाह में अपने विश्वास के कारण अपने घरों और भूमि से निकाले गए। यह सूरह बनू नदीर एक यहूदी कबीले का उल्लेख करती है जिसे 7वीं शताब्दी में मदीना से निष्कासित किया गया था, लेकिन इसका व्यापक संदेश किसी भी समुदाय पर लागू होता है जो भगवान में अपने विश्वास के लिए उत्पीड़ित होता है, जिसमें कहा गया है, वे हैं जो बिना किसी अधिकार के अपने घरों से निकाले गए केवल इसलिए कि वे कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। कुरान 59:2। राजा ऐतिहासिक फिलिस्तीन के हिस्से के रूप में इस कुरानी कहानी में फिट बैठता है। 20वीं शताब्दी के व्यवधानों से पहले मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों तक फिलिस्तीन में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, जो अब्राहमिक भगवान इस्लाम में अल्लाह के प्रति एक साझा भक्ति को साझा करते थे। राजा में ही 3वीं शताब्दी ईस्वी से प्रलेखित ईसाई उपस्थिति है, जिसमें रोमन शासन के तहत प्रारंभिक ईसाई समुदाय बनाए गए थे। 7वीं शताब्दी तक मुस्लिम विजय के बाद अधिकांश आबादी धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गई, लेकिन ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक बने रहे। विभिन्न इस्लामी खलीफाओं जैसे उमैयद, अब्बासिद और बाद में ओटोमंस के तहत मुसलमानों के साथ रहते हुए यह से अस्तित्व आपसी सम्मान से चिन्हित था, जिसमें यहूदी और ईसाई इस्लामी कानून के तहत किताब के लोग के रूप में मान्यता प्राप्त थे, जिन्हें कर जजिया के बदले में संरक्षण धिम्मी स्थिति प्रदान किया गया, जिससे वे अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकें। ऑटोमन साम्राज्य, जिसने 1517 से 1917 तक फिलिस्तीन पर शासन किया, इस अंतर धार्मिक सद्भाव को बनाए रखा। मुसलमान, ईसाई और यहूदी पवित्र स्थानों जैसे यरूशलम को साझा करते थे, जहां अलक्सा मस्जिद, पवित्र कब्र का चर्च और पश्चिमी दीवार निकटता में खड़े थे, जो एक साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक थे। राजा में ईसाई समुदायों ने चर्चों और संस्थानों को बनाए रखा, जबकि यहूदी समुदाय, हालांकि छोटे सामाजिक संरचना में एकीकृत थे, अक्सर अपने मुस्लिम और ईसाई पड़ोसियों के साथ व्यापार और विद्वता में संलग्न थे। यह शांतिपूर्ण से अस्तित्व प्रकाशित वाक्य में संतों का शिविर के साथ मेल खाता है, एक विश्वासियों का समुदाय जो धार्मिक सीमाओं के पार एकजुट है, भगवान के प्रति समर्पित। कुरानी कहानी उन लोगों की जो अल्लाह में अपने विश्वास के कारण अपने घरों से निकाले गए, गाजा के आधुनिक इतिहास में प्रतिबिंबित होती है। नाजी जर्मनी के उदय और इसके बाद सैकड़ों हजारों साइनोवादियों के फिलिस्तीन में स्थानांतरण के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसे 1938 में एवियन सम्मेलन और 1933 में हवारा समझौते ने सुगम बनाया। एवियन सम्मेलन, जो जुलाई 1938 में आयोजित हुआ, नाजी उत्पीड़न के बढ़ने के साथ बढ़ते यहूदी शरणार्थी संकट को संबोधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। हालांकि अधिकांश देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे, ने महत्वपूर्ण संख्या में यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिश जनादेश के तहत फिलिस्तीन कुछ व्यवहार्य गंतव्यों में से एक बन गया। हवारा समझौता, जो 25 अगस्त 1933 को नाजी जर्मनी और साइनवादी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, ने जर्मन यहूदियों को जर्मन सामानों के रूप में उनकी संपत्ति का एक हिस्सा स्थानांतरित करके फिलिस्तीन में प्रवास करने की अनुमति दी, जिसे नाजी जर्मनी के आर्थिक बहिष्कार को बाईपास किया गया। 1933 और 1939 के बीच इस समझौते के तहत लगभग 60,000 यहूदी फिलिस्तीन में प्रवासित हुए, जो पूंजी लाए जो साइनवादी बस्तियों को बढ़ावा देती थी। इस बड़े पैमाने पर विस्थापन ने फिलिस्तीन में मौजूदा सद्भाव को बाधित कर दिया। साइनवादियों का आगमन, जो एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने के वैचारिक लक्ष्य से प्रेरित था, ने स्वदेशी आबादी के साथ तनाव पैदा किया, जो मुख्य रूप से मुस्लिम थी, जिसमें महत्वपूर्ण ईसाई और छोटे यहूदी समुदाय थे। 1948 तक इसराइल राज्य की स्थापना ने नकबा को जन्म दिया, जिसमें 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों और भूमि से निकाले गए। राजा कई विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए शरणस्थली बन गया, जो अल्लाह में अपने विश्वास के कारण नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के नुकसान का विरोध करने के परिणाम स्वरूप निकाले गए, एक प्रतिरोध जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में निहित था, जो सदियों से भगवान के प्रति समर्पित एक समुदाय के रूप में था। यह कुरानी वर्णन को प्रतिबिंबित करता है कि एक निष्ठावान समुदाय को अन्यायपूर्ण रूप से निकाला गया और प्रकाशित वाक्य के संतों का शिविर को घेरे में, क्योंकि गाजा की आबादी मुसलमान, ईसाई और ऐतिहासिक रूप से यहूदी विस्थापन और हिंसा के सामने अपनी दृढ़ता के लिए उत्पीड़न का सामना करती है। मेमने की जीवन की पुस्तक और कुरान में शाश्वत तख्ति। प्रकाशित वाक्य में मेमने की जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 13:8-21:27 में उन लोगों के नाम शामिल हैं जो यीशु द्वारा उद्धार किए गए हैं, शैतान के छल के प्रति प्रतिरक्षित हैं और नए यरूशलम के लिए नियत हैं। यह अवधारणा कुरान की शाश्वत तख्ती लौह महफूज में एक समानांतर पाती है, जिसका उल्लेख सूरह अल बुरुज 85:21-22 में किया गया है, बल्कि यह एक गौरवशाली कुरान है एक संरक्षित तख्ती में। इस्लामी धर्मशास्त्र में शाश्वत तख्ती को सभी चीजों, अतीत, वर्तमान और भविष्य का दैवीय रिकॉर्ड समझा जाता है, जो सृष्टि से पहले अल्लाह द्वारा लिखा गया था। इसमें सभी आत्माओं के भाग्य शामिल हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अपने विश्वास और धार्मिकता के कारण स्वर्ग जन्नत प्राप्त करेंगे। मेमने की जीवन की पुस्तक और शाश्वत तख्ती के बीच प्रतिबिंब उनकी धर्मी लोगों के दैवीय रिकॉर्ड के रूप में भूमिका में निहित है। प्रकाशित वाक्य में जीवन की पुस्तक उन लोगों को सूचीबद्ध करती है जो मसीह के प्रति निष्ठावान रहते हैं और पशु के छल का विरोध करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8 में कहा गया है कि केवल वे जो जीवन की पुस्तक में नहीं हैं, पशु की पूजा करते हैं, जो उनकी उद्धार और बुराई से सुरक्षा को दर्शाता है। इसी तरह इस्लामी परंपरा में शाश्वत तख्ती में उन लोगों के नाम शामिल हैं जो जन्नत के लिए नियत हैं, क्योंकि अल्लाह का ज्ञान उन सभी को समेटता है जो उसमें विश्वास बनाए रखेंगे। कुरान 2:185। दोनों अवधारणाएं दैवीय पूर्वनियति और विश्वासियों के लिए सुरक्षा का संकेत देती हैं, जो इस विचार के साथ मेल खाती हैं कि फिलिस्तीन के समर्थक उद्धार प्राप्त लोगों के रूप में गाजा में पशु इसराइल का विरोध करने वाले एक दैवीय रूप से नियत समुदाय का हिस्सा हैं, जो संतों का शिविर है। यह प्रतिबिंब उस कहानी का समर्थन करता है कि गाजा के निष्ठावान मुसलमान, ईसाई और ऐतिहासिक रूप से यहूदी अपने वैश्विक समर्थकों के साथ एक पवित्र समुदाय का हिस्सा हैं, जो इन दैवीय रिकॉर्डों में अंकित हैं। उनका विस्थापन और उत्पीड़न के प्रति प्रतिरोध, जो उनकी भगवान के प्रति भक्ति में निहित है, उनकी धार्मिकता के रूप में स्थिति को दर्शाता है, जो अनंत पुरस्कार के लिए नियत है, चाहे वह नया यरूशलम, प्रकाशित वाक्य हो या जन्ना, कुरान। नई पृथ्वी वालहाला, नया यरूशलम और जन्ना में उच्चतम रैंक के रूप में। नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में नई पृथ्वी रागनारोक के बाद एक नवीकृत विश्व का वर्णन करती है, जहां जीवित बचे देवता जैसे बल्डर, होडर और मनुष्य लिप और लिपथ्रासर एक उज्ज्वल सूरज के तहत एक उपजाऊ पृथ्वी को फिर से बसाते हैं। यह नवीकरण अक्सर वालहाला ओडिन के हॉल के साथ जुड़ा हुआ है, जहां मृत योद्धा भगवान के साथ भोज करते हैं, हालांकि वालहाला स्वयं एक प्री रागनारोक क्षेत्र है। रागनारोक के बाद नई पृथ्वी को एक आदर्श वालहाला के रूप में देखा जा सकता है, अनंत सम्मान, शांति और प्रचुरता का स्थान उन लोगों के लिए जो विपदा को सहन करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में नई यरूशलम के समानांतर है, एक नया स्वर्ग और पृथ्वी जहां भगवान उद्धार प्राप्त लोगों के साथ रहता है, सभी दुखों को मिटा देता है, अब न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न दर्द। इस्लामी अंतिमकाल शास्त्र में जन्ना में उच्चतम रैंक, जिसे जन्नत अल फिरदौस के नाम से जाना जाता है, स्वर्ग का शिखर है जो अल्लाह के सिंहासन के सबसे निकट है और सबसे धार्मिक लोगों के लिए आरक्षित है, जैसे कि पैगंबर, शहीद और वे जो अपनी आस्था के लिए बड़ी परीक्षणों को सहन करते हैं। सही अल बुखारी हदीस 2790। इन अवधारणाओं का संरेखन उल्लेखनीय है। नई पृथ्वी वालहाला, नॉर्डिक शांति और प्रचुरता का एक नवीकृत विश्व, जहां रागनारोक के जीवित बचे लोग जो अराजकता और दुख का सामना करते हैं एक गौरवशाली अस्तित्व प्राप्त करते हैं, जो दिग्गजों के झगड़ों और नागलफर जैसी विनाशकारी शक्तियों से मुक्त है। नया यरूशलम, प्रकाशित वाक्य, उद्धार प्राप्त लोगों, मेमने की जीवन की पुस्तक में शामिल लोगों के लिए एक दैवीय शहर, जहां भगवान की उपस्थिति बिना दुख के अनंत जीवन सुनिश्चित करती है, जो उन संतों के लिए पुरस्कार है जो पशु द्वारा उत्पीड़न को सहन करते हैं। जन्नत अल फिरदौस, इस्लाम, उच्चतम स्वर्ग, जहां अल्लाह में अपनी आस्था के लिए परीक्षणों का सामना करने वाले धार्मिक लोग उनके सबसे निकट हैं, अनंत शांति और आनंद का आनंद लेते हैं। ये अंतिमकालिक दर्शन उनके वादे में एकजुट होते हैं कि अंत के समय के परीक्षणों को सहन करने वाले विश्वासियों के लिए एक गौरवशाली परलोक होगा। राजा संतों का शिविर के रूप में और इसके समर्थक जो मेमने की जीवन की पुस्तक और शाश्वत तख्ती में अंकित हैं, इस कहानी में फिट बैठते हैं। उनका दुख जो ऐतिहासिक विस्थापन और चल रहे संघर्ष से उत्पन्न होता है, रागनारोक से पहले की अराजकता, प्रकाशित वाक्य में पशु के उत्पीड़न और अल्कियामा से पहले के परीक्षणों को प्रतिबिंबित करता है। साइनवादी प्रवास से पहले फिलिस्तीन में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विश्वासियों की एकता को दर्शाता है जो इस नवीकरण के लिए नियत हैं, चाहे वह वालहाला की अनंत सम्मान, नई यरूशलम की दैवीय उपस्थिति या जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह के निकटता के रूप में कल्पना की जाए। ऐतिहासिक संदर्भ: नाजी जर्मनी, एवियन सम्मेलन और हवारा समझौते द्वारा बाधित सह अस्तित्व। फिलिस्तीन में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का ऐतिहासिक सह अस्तित्व सदियों तक एक जीवंत वास्तविकता थी जो एक एकीकृत संतों का शिविर की धार्मिक कहानी के साथ मेल खाता है जो भगवान के प्रति समर्पित है। ऑटोमन साम्राज्य 1517-1917 के तहत फिलिस्तीन एक बहुधार्मिक समाज था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, लेकिन ईसाइयों ने चर्चों को बनाए रखा, उदाहरण के लिए गाजा में 3वीं शताब्दी से, और यहूदी छोटे अल्पसंख्यक के रूप में रहते थे, अक्सर व्यापार और विद्वता में समृद्ध थे। यह सद्भाव इस्लामी शासन में निहित था जो यहूदियों और ईसाइयों को किताब के लोग के रूप में संरक्षित करता था, जिससे वे समाज में योगदान देते हुए अपनी आस्था का अभ्यास कर सकें। यरूशलम जैसे पवित्र स्थल इस सह अस्तित्व को दर्शाती थी, जिसमें अलक्सा मस्जिद, पवित्र कब्र का चर्च और पश्चिमी दीवार साझा आध्यात्मिक स्थलचिन्ह के रूप में थे। यह एकता नाजी जर्मनी की नीतियों और इसके बाद फिलिस्तीन में साइनवादी प्रवास द्वारा बाधित हुई। 1930 के दशक में नाजी उत्पीड़न के उदय ने एवियन सम्मेलन को जन्म दिया जो जुलाई 1938 में यहूदी शरणार्थी संकट को संबोधित करने के लिए आयोजित हुआ। अधिकांश राष्ट्रों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे, ने महत्वपूर्ण संख्या में यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिश जनादेश के तहत फिलिस्तीन एक प्राथमिक गंतव्य बन गया। हवारा समझौता, जो 25 अगस्त 1933 को नाजी जर्मनी और साइनवादी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, ने जर्मन यहूदियों को जर्मन सामानों के रूप में उनकी संपत्ति का एक हिस्सा स्थानांतरित करके फिलिस्तीन में प्रवास करने की अनुमति देकर प्रवास को सुगम बनाया, जिससे नाजी जर्मनी के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार को बाईपास किया गया। 1933 और 1939 के बीच इस समझौते के तहत लगभग 60,000 यहूदी फिलिस्तीन में प्रवासित हुए जो पूंजी लाए जो साइनवादी बस्तियों को बढ़ावा देती थी। यह प्रवाह, जो एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने की साइनवादी विचारधारा से प्रेरित था, ने स्वदेशी आबादी के साथ तनाव पैदा किया। 1940 के दशक तक सैकड़ों हजारों साइनवादियों का आगमन, जो 1948 के नकबा में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ने 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों और भूमि से विस्थापित कर दिया, जिनमें से कई गाजा में शरण लेने के लिए भाग गए। यह विस्थापन कुरानी कहानी को प्रतिबिंबित करता है कि अल्लाह में अपने विश्वास के कारण अपने घरों से निकाले गए लोगों की, क्योंकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में निहित था जो एक बहुधार्मिक समुदाय के रूप में भगवान के प्रति समर्पित था। सह अस्तित्व में व्यवधान अंतिमकालिक कहानी के साथ मेल खाता है। बुराई की शक्तियां, पशु और इसके सहयोगी संतों का शिविर गाजा पर हमला करते हैं, विश्वासियों की आस्था का परीक्षण करते हैं जो वालहाला, नई यरूशलम या जन्नत अल फिरदौस में नवीकरण के लिए नियत हैं। निष्कर्ष: राजा संतों का शिविर के रूप में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वास्तविकता को मूर्त रूप देता है, जिसमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों तक फिलिस्तीन में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, भगवान के प्रति अपनी भक्ति में एकजुट थे, जब तक कि नाजी जर्मनी की नीतियों, एवियन सम्मेलन और हवारा समझौते के कारण होने वाला विस्थापन इस सद्भाव को बाधित नहीं करता। यह ऐतिहासिक व्यवधान कुरानी कहानी के साथ मेल खाता है कि अल्लाह में अपने विश्वास के कारण अपने घरों से निकाले गए लोगों की, सूरह 59:2, गाजा को एक विश्वासियों के समुदाय के रूप में स्थापित करता है जो घेरे में है, प्रकाशित वाक्य के संतों का शिविर, प्रकाशित वाक्य 22:9 के समान। प्रकाशित वाक्य में मेमने की जीवन की पुस्तक कुरान की शाश्वत तख्ती को प्रतिबिंबित करती है, दोनों ही धर्मी लोगों, गाजा और इसके समर्थकों को रिकॉर्ड करते हैं जो इस उत्पीड़न का विरोध करते हैं जो दैवीय पुरस्कार के लिए नियत हैं। नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में नई पृथ्वी, जिसे एक गौरवशाली वालहाला के रूप में व्याख्या किया गया है, नई यरूशलम और जन्नत अल फिरदौस के समानांतर है जो अंत के समय के परीक्षणों को सहन करने वाले विश्वासियों के लिए एक नवीकृत अस्तित्व का वादा करता है। सह अस्तित्व और विस्थापन के ऐतिहासिक तथ्य ईसाई धर्म, इस्लाम और नॉर्डिक पौराणिक कथाओं की धार्मिक कहानियों के साथ मेल खाते हैं जो गाजा को एक पवित्र युद्ध क्षेत्र के रूप में चित्रित करते हैं जहां विश्वासी, जो दैवीय रिकॉर्डों में अंकित हैं, उत्पीड़न का सामना करते हैं लेकिन उन्हें अनंत नवीकरण का वादा किया गया है। यह संरेखन गाजा के संघर्ष के अंतिमकालिक महत्व को रेखांकित करता है जो अच्छे और बुरे के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध को प्रतिबिंबित करता है जिसमें विश्वासी एक गौरवशाली परलोक में अंतिम उद्धार के लिए तैयार हैं।